पृष्ठ संख्या एक, प्रथम खंड, प्राचीन युग और मध्य युग, प्रथम अध्याय, ग्रीक दर्शन सॉक्रेटिस तक। पाश्चात्य दर्शन का जन्म ग्रीस में हुआ। ग्रीक दार्शनिकों ने पहले जड़ जगत का विवेचन किया, फिर अंतर्मुखी दृष्टि से चेतन आत्मा का विश्लेषण किया और अंत में जड़ जगत तथा चेतन आत्मा का समन्वय तत्व में कर दिया। ग्रीक दर्शन का अध्ययन पाश्चात्य दर्शन के इतिहास को जानने के लिए तो आवश्यक है ही, किंतु उसका अपना भी एक आकर्षण है। ग्रीक दर्शन के बिना पाश्चात्य दर्शन को जानना असंभव है। पाश्चात्य दर्शन के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सूत्रपात ग्रीक दर्शन में हो गया था। व्हाइट हेड का यह कथन कि यूरोपीय दार्शनिक परंपरा प्लेटो के सिद्धांतों पर धारावाहिक टिप्पणी है, सर्वथा सत्य है। एरिस्टॉटल का मध्य युग की शास्त्रीय विचारधारा जो अत्यधिक प्रभाव पड़ा वह प्रसिद्ध है। मध्य युग में एरिस्टॉटल ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। प्रसिद्धि है कि एक पिता ने अपने पुत्र को, जिसने सूर्य में कुछ धब्बों को अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध किया था, यह पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, मैंने एरिस्टॉटल को कई बार पढ़ा है और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अतः निश्चित समझो कि जिन धब्बों को तुम सूर्य में बताते हो वे सूर्य में न होकर तुम्हारी ही आँखों में है। ग्रीक दर्शन के अध्ययन का यूरोप को धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त करने में और दर्शन का स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण करने में विशेष हाथ रहा है। मध्य युग की धार्मिक दास्ता को समाप्त करके आधुनिक युग का सूत्रपात करने में ग्रीक दर्शन के अध्ययन ने बड़ा योग दिया है। साथ ही साथ विश्लेषण और संदेह के कुप्रभाव को रोकने में और संश्लेषण तथा समन्वयात्मक अंतर्दृष्टि जागृत करने में एवं सत्यम शिवम सुंदरम को प्रतिष्ठित करने में भी ग्रीक दर्शन के अध्ययन ने सक्रिय सहायता दी है। सभ्यता, संस्कृत और दर्शन का ग्रीस में सहसा प्रादुर्भाव होना अनेक विद्वानों के आश्चर्य का विषय रहा है। पृष्ठ संख्या दो, प्रायः विद्वानों की यह मान्यता है कि यह ग्रीस का अपना स्वतंत्र विकास है और इस पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु 20वीं सदी के कई अन्वेषणों से, विशेषतः भूगर्भ की खुदाई में प्राप्त कई महत्वपूर्ण वस्तुओं से यह सिद्ध हो गया कि प्राचीन ग्रीस पर मिस्र और बेबीलोनिया का प्रभाव निःसंदेह पड़ा है। यह भी बहुत कुछ संभव है कि भारतीय विचारधारा भी ईरान, मिस्र और बेबीलोनिया होती हुई ग्रीस के उपनिवेशों में और वहां से ग्रीस में पहुंचती हो। ग्रीक दर्शन का सबसे प्राचीन मत माइलेशियन मत अर्थात माइलेशियन स्कूल है, जिसके तीन प्रतिनिधि थेलिज, एनेक्जीमेंडर और एनेक्जीमेनिज हैं। अगला शीर्षक है थेलिज। थेलिज पाश्चात्य दर्शन के सर्वप्रथम दार्शनिक हैं। इनकी गणना ग्रीस के सप्तऋषियों में की जाती है। इन्होंने मिस्र की रेखागणित प्रणाली का ग्रीस में प्रथम बार प्रचार किया। इनका समय ईसा से पूर्व छठी शताब्दी है, क्योंकि इन्होंने 585 ईस्वी पूर्व में होने वाले सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर दी थी। थेलिज के अनुसार विश्व का परम तत्व जल है। जल से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। जल के ऊपर ही इसकी स्थिति है और जल में ही इसका प्रलय है। जल बिंदु रूप से सबका जनक है। जल गति और परिणाम का सूचक है और उस परिणाम का आधारभूत तत्व भी है। जल तरल है किंतु उड़ने वाली भाप के रूप में और घन बर्फ के रूप में भी बदलता है। जल जीवन और पोषण के लिए आवश्यक है। अगला शीर्षक है एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर थेलिज के शिष्य थे। इनकी कृति प्रकृति पर निबंध अर्थात ऑन नेचर यूरोपीय दर्शन साहित्य की प्रथम रचना है। इसके कुछ अंश प्राप्त हैं। एनेक्जीमेंडर के अनुसार जल या किसी भौतिक द्रव्य को परम तत्व नहीं माना जा सकता। परम तत्व अनंत होना चाहिए। चारों भौतिक द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शांत हैं। इनमें परस्पर संघर्ष है। यदि इनमें कोई द्रव्य या महाभूत अनंत होता तो अन्य महाभूतों की सत्ता नहीं रहती। अतः परम तत्व इन चारों महाभूतों से भिन्न और इनका भी जनक होना चाहिए। इस परम तत्व को उन्होंने केवल असीम अर्थात एपेरॉन आर द बाउंडलेस कहकर पुकारा है। यह अनंत नित्य स्वयंभू अविनाशी और अपरिणामी है। पृष्ठ संख्या 3। इस परम तत्व से सब भूतों की उत्पत्ति है। इसी में उनकी स्थिति है और इसी में उनका लय है। स्वयं अपरिणामी और अगतिशील होने पर भी यह परम तत्व संसार की गति परिणाम विरोध और संघर्ष का जनक है। सांसारिक पदार्थों में विरोध या संघर्ष होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से उनका विकास होता है। इन विचारों का प्रभाव हेरेक्लाइट्स और हेगल पर पड़ा है। एनेक्जीमेंडर विकासवाद के भी जनक हैं। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वास्तविक अर्थ उसका विकास है। मछली आदि जल जंतुओं से पक्षी और पशुओं के द्वारा क्रमशः मनुष्य का विकास हुआ है। एनेक्जीमेंडर ने यूरोप में पहली बार पृथ्वी को गोल और सूर्य को पृथ्वी से कई गुना बड़ा बताया। उन्होंने ही प्रथम मानचित्र भी बनाया। अगला शीर्षक है एनेक्जीमेनिज। ये एनेक्जीमेंडर के शिष्य बताए जाते हैं। इनमें न तो अपने गुरु जैसी प्रतिभा थी और न वैसी मौलिकता। इन्होंने वायु को परम तत्व माना और उसे असीम और अनंत बताया। वायु ही अग्नि का रूप लेती है और तरल होकर जल बन जाती है एवं जमकर पृथ्वी के रूप में परिणत हो जाती है। आत्मा भी प्राणवायु हुई है, इससे गति और जीवन का संचार होता है। समस्त लोक वायु के आधार पर टिके हुए हैं। माइलेशियन मत का महत्व उसके सिद्धांतों की अपेक्षा उसकी अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण अधिक है। माइलेशियन मत के बाद पाइथेगोरियन मत का जन्म हुआ। इसके संस्थापक पाइथागोरस थे। इनमें वैज्ञानिक विश्लेषण और रहस्यवादी साधन का समन्वय था। इनका समय ईसा से पूर्व छठी शताब्दी है। गणित के ये संस्थापक माने जाते हैं। रेखा गणित में इनके नाम से इनका एक सिद्धांत अभी तक प्रचलित है। इनके अनुसार सब पदार्थ संख्या मात्र यानी कि नंबर है। संगीत को ये मानसिक दोष दूर करने का साधन मानते थे और दर्शन को सर्वोत्तम संगीत कहते थे। जैसे संगीत में विविध स्वर एक ही तान को ध्वनित करते हैं, वैसे ही दर्शन में भी सब सांसारिक पदार्थ परस्पर भिन्न होते हुए भी एक ही तत्व का राग अलापते हैं। माइलेशियन दार्शनिकों ने द्रव्य अर्थात मैटर का विवेचन किया। पाइथागोरस ने स्वरूप अर्थात फॉर्म की प्रतिष्ठा की। स्वरूप अतींद्रिय सामान्य और विज्ञान रूप है। अभेद समन्वय और सामंजस्य इसी के कारण संभव होते हैं। गणित का विषय विज्ञान है। इंद्रियों द्वारा अनुभूत जगत में जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं वे सब विज्ञानों की छीड़ प्रकृति हैं। पृष्ठ संख्या 4। पाइथागोरस के इन विचारों का प्रभाव प्लेटो के विज्ञानवाद पर पड़ा है। पाइथागोरस ने अपने समाज की स्थापना की। इस संस्था के सदस्य धार्मिक और नैतिक जीवन बिताते हुए दर्शन की चर्चा और रहस्यमय साधना करते थे। वे निरामिष भोजी थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आत्मा की अमरता और ईश्वर की प्रभुता को मानते थे। त्याग तपस्या और संयम पर उनका विशेष ध्यान था। कर्मवाद में उनकी अटल श्रद्धा थी। प्रार्थन कर्मों से यह जीवन बना है और इस जन्म के कर्म पुनर्जन्म के स्वरूप का निर्माण करेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गुरु और शिष्य के साक्षात संपर्क को वे बहुत महत्व देते थे। असली विद्या गुरु कृपा से प्राप्त होती है। संसार जन्म मरण चक्र है। इस भव चक्र से छुटकारा पाना मानव जीवन की सार्थकता है। यह ज्ञान से ही संभव हो सकता है। दर्शन का ज्ञान प्रेम है। असली ज्ञान तटस्थ दृष्टा का ज्ञान है। निर्लिप्त होकर इस जगत में साक्षी समान रहना सर्वोत्तम है। ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के मनुष्य आते हैं। प्रथम वे जो केवल क्रय विक्रय करने आते हैं। द्वितीय वे जो खेल में भाग लेते हैं, और तृतीय वे हैं जो केवल दर्शक बनकर आते हैं। इस प्रकार इस जीवन में भी तीन श्रेणियों के लोग हैं। सबसे नीचे वे हैं जो केवल क्रय विक्रय करते हैं। मध्यम श्रेणी में वे लोग हैं जो इस जीवन के खेल में सक्रिय भाग लेते हैं। उत्तम श्रेणी में वे हैं जो केवल तटस्थ दृष्टा हैं। इन्हीं को क्रमशः धन के प्रेमी, यश के प्रेमी और ज्ञान के प्रेमी कहा जाता है। ज्ञान का प्रेमी होना अर्थात तटस्थ दार्शनिक होना सर्वोत्तम है। प्लेटो ने भी पाइथागोरस के इन विचारों को अपनाया है। महावीर और बुद्ध के समसामयिक पाइथागोरस के ये विचार भारतीय विचारों से भी बहुत कुछ मिलते हैं। द्रव्य अर्थात मैटर और स्वरूप अर्थात फॉर्म की समस्या के बाद ग्रीक दर्शन में परिणाम यानी कि बीकमिंग और सत्ता यानी कि बीइंग की समस्या आती है। अगला शीर्षक है हेरेक्लाइट्स। ये ईसा से पूर्व 6वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के आरंभ में हुए। भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी राजकुल में हुआ था और ये अपने छोटे भाई को उत्तराधिकारी घोषित करके विरक्त हो गए थे। ये बड़े स्वाभिमानी और प्रतिभाशाली थे। रहस्यवाद की ओर इनकी स्वाभाविक अभिरुचि थी। इनकी सूक्तियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लिखा है, मेरा दर्शन इन्हें गिने सुयोग्य व्यक्तियों के लिए ही है, क्योंकि गधों को घास चाहिए स्वर्ण नहीं। हेरेक्लाइट्स क्षणभंगवादी थे। पृष्ठ संख्या 5। हेरेक्लाइट्स के अनुसार अग्नि या तेजसत्व परम तत्व है। इसी से जल और पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह तत्व ज्वलंत और गतिशील है। अग्नि और परिणाम दोनों एक हैं। संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य और क्षणिक है। वस्तुतः कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो गतिशील या परिणामी हो, किंतु गति या परिणाम ही एकमात्र तत्व है। विश्व गति है, परिणाम है, धारा है, प्रवाह है, संतान है। कोई भी व्यक्ति एक नदी में दो बार नहीं नहा सकता, क्योंकि जिस पानी में प्रथम बार स्नान किया वह बह गया और उसके स्थान पर दूसरा पानी आ गया। दूसरी बार स्नान दूसरे पानी में ही हो सकता है। अग्नि शिखा प्रतिक्षण बदलती रहती है। कोई वस्तु दो क्षणों तक नहीं टिक सकती। नदी में प्रतिक्षण पानी बहता रहता है। अग्नि शिखा में प्रतिक्षण नई लौ उठती रहती है। एकता और भ्रांति समानता और अविच्छिन्न वेग के कारण होती है। एक जल समूह दूसरे जल समूह के समान है और एक लौ दूसरे लौ के समान। अविच्छिन्न वेग से एक के बाद तुरंत दूसरा जल समूह या दूसरी लौ आती रहती है। अतः हमें यह भ्रांति हो जाती है कि यह वही पानी है या यह वही शिखा है। अखंड गति, निरंतर परिवर्तन, अविच्छिन्न प्रवाह, अटूट धारा, यह संसार का नियम है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि बौद्धों ने भी अपने क्षणभंगवाद के प्रतिपादन में जल प्रवाह और दीपशिखा के दृष्टांत दिए हैं। हेरेक्लाइट्स ने संघर्ष, विरोध, निषेध और अभाव को बहुत महत्व दिया है। विरोध और निषेध का अर्थ गति या परिवर्तन है, अतः जीवन के लिए विरोध आवश्यक है। विरोध का अभाव मृत्यु है। विरोध या निषेध के बिना गति या विकास संभव नहीं। प्रत्येक वस्तु अपनी शक्ति से अपनी विरोधी वस्तु में बदलती है और फिर उसको भी अपने साथ लेकर आगे चलती है। विरोध का अर्थ आत्यंतिक विरोध नहीं है। हेरेक्लाइट्स ने तर्कशास्त्र के विरोध नियम को तिलांजलि नहीं दी है। विरोध का अर्थ है परिवर्तन। आत्यंतिक विरोध असंभव है, यह हमारी कल्पना है, वस्तु सत्य नहीं। पक्ष का विपक्ष में परिवर्तन होता है और फिर समन्वय की आवश्यकता होती है। विरोध तो साधन मात्र है, साध्य समन्वय है। पक्ष और विपक्ष का विरोध अर्थात स्ट्राइफ ऑफ अपोजिट्स, समन्वय एट्यूनमेंट को उत्पन्न करता है। हेरेक्लाइट्स ने इसे दो दृष्टांतों से समझाया है। प्रथम, जब धनुष से बाण चलता है तो चलाने वाले के दोनों हाथ विरोधी दिशाओं में खींचते हैं, पृष्ठ संख्या 6, किंतु लक्ष्य उनका एक ही है। द्वितीय बीड़ा के तार भिन्न भिन्न रीति से खींचे जाते हैं और तब भी विभिन्न स्वर एक ही राग को उत्पन्न करते हैं, अतः विरोध समन्वय जनक है। हेरेक्लाइट्स के इन विचारों को आगे चलकर हेगल ने अपनाया है। हेरेक्लाइट्स में सापेक्षवाद और बुद्धिवाद अर्थात रिलेटिविज्म एंड रिलेशनिज्म दोनों मिलते हैं। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, अतः प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। जो क्षणिक है उसका सापेक्ष होना अनिवार्य है। समुद्र का पानी मछली के लिए मीठा और मनुष्य के लिए खारा है। हम हैं भी और नहीं भी हैं। हम सत भी हैं, असत भी हैं और सद सद निर्वचनीय भी हैं। जितने भी द्वंद्व हैं सब सापेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। उदाहरणार्थ एक और अनेक, अच्छा और बुरा, गति और स्थिति, परिणाम और सत्ता, जीवन और मरण, सर्दी और गर्मी आदि। जीवन अग्नि है, सुषुप्त जल है, मृत्यु पृथ्वी है। अग्नि, जल और पृथ्वी, यह अवनत मार्ग अर्थात एनो आर द वे डाउन है। पृथ्वी, जल और अग्नि, यह उन्नत मार्ग यानी कि कीटो आर द वे अप है। अवनत मार्ग तत्व के अवरोह अर्थात डिसेंट या तिरोभाव इनोवल्यूशन का मार्ग है। उन्नत मार्ग तत्व के आरोह अर्थात एसेंट या विकास इवोल्यूशन का मार्ग है। संसार में, व्यवहार में ये दोनों मार्ग भिन्न प्रतीत होते हैं। परमार्थ में ये दोनों मार्ग एक हो जाते हैं। हेरेक्लाइट्स सापेक्षवाद पर ही नहीं रुक जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति बुद्धिवाद की ओर भी है। अग्नि विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है और सब कुछ इस अग्नि का परिणाम है। यह विश्व का सार्वभौम नियम है। यह चेतन विज्ञान अर्थात लोगस है। यह दिक्कालातीत है। इंद्रिय अनुभूत जन्य ज्ञान क्षीण और मंद होता है। यह अवनत मार्ग है। शुद्ध ज्ञान विज्ञान द्वारा उत्पन्न होता है। यह उन्नत मार्ग है। सांसारिक मनुष्य अपनी उदर पूर्ति में ही लगे रहते हैं। उन्हें इस विज्ञान का साक्षात करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह विशुद्ध ज्ञान निरंतर जलने वाली अग्नि की ज्योति है। इसका साक्षात्कार मानव जीवन का लक्ष्य है। हेरेक्लाइट्स का प्रभाव परवर्ती यूरोपीय दार्शनिकों पर बहुत अधिक पड़ा है। पृष्ठ संख्या 7। उनके विशुद्ध ज्ञान और सापेक्षवाद का प्रभाव प्रोटेगोरस के इस सिद्धांत पर कि विज्ञान आत्मा मनुष्य ही सब पदार्थों का मानदंड है अर्थात होमोमेंसोर है अस्पष्ट है। प्लेटो ने इंद्रिय जगत के लिए हेरेक्लाइट्स का क्षणिकवाद और सापेक्षवाद स्वीकार कर लिया। उनके सापेक्षवाद ने सोफिस्ट लोगों को और बुद्धिवाद ने स्टोइक्स को प्रभावित किया। उनके बुद्धिवाद का प्रभाव आधुनिक युग के बुद्धिवादियों पर पड़ा। उनका यह सिद्धांत कि बालक के समान निर्मल हुए बिना ज्योत का साक्षात्कार नहीं होता ईसाई धर्म को भी मान्य हुआ। उनके संघर्ष के सिद्धांत की छाप नित्य पर पड़ी। उनके क्षणिकवाद का प्रभाव ह्यूम विलियम जेम्स और वर्गसा पर पड़ा। उनके विरोध या निषेध और समन्वय संबंधी विचार हेगल ने स्वीकार किए।